श्लोक श्रोतम श्रुतनैव न कुंडलेन दानेन पाणिनम न तु कंकडेन विभाति कायः करुणापराणां परोपकारेण तु चंदनेन। प्रसंगः परोपकारैव शरीरं विशेषेण शोभत इत्याह श्रोतमिति। अन्वयः करुणापराणां श्रोतम श्रुतेन एव कुंडलेन न पाणिः दानेन कंकडेन तु न कायः परोपकारैः चंदनेन तु न विभाति। व्याख्या करुणापराणां दयालु स्वभावानां श्रोत्रं कर्णः श्रुतेन एव वेदशास्त्र श्रवणेन एव कुंडलेन न कर्णाभरणेन न पाणिः हस्तः दानेन सत्पात्रेभ्यो दनादि वितरणेन कंकणेन तु न कटकेन तु न कायः शरीरं परोपकारैः अन्यहितकरणैः चंदनेन तु न गंधसारेण तु न विभाति विशेषेण शोभते। सरलार्थ दयालु स्वभावानां जनानां कर्णः वेदशास्त्र श्रवणेनैव शोभते न तु कर्णाभरणेन हस्तः सत्पात्रेभ्यो धनादि वितरणेनैव शोभते न तु करवेष्टनेन शरीरम् अन्यहितकरणैः शोभते न तु गंधसारेण। टिप्पणी करुणापराणां करुणानां पराः करुणापरास्तेषां परोपकारैः परेषाम् उपकाराः परोपकारस्तै। श्लोके अस्मिन् स्यादिन्द्रवज्रा यदितौ जगौघः इति उपेन्द्रवज्रा जतजातस्तोगौः इति लक्षणयोर्मिश्रिता उपजातिवृत्तं लक्षणं यथा अनन्तरोदि ऋतलक्ष्मभाजौ पादौ यदीया उपजातयस्ताः इत्थं किलान्यास्वपि मिश्रितासु वदन्ति जातिस्विदमेव नाम इति। अत्र परिसंख्यालङ्कारस्तलक्षणं यथा प्रश्नादप्रश्नतो वापि कथितान्धस्तु नो भवेत् तादृगण्यव्यहो शेषच्छास्द अर्थोऽथवा तदा परिसंख्याचतुर्भेदादर्पणं समुदीरिता इति। हिंदी प्रसंग परोपकार से ही शरीर की शोभा होती है इसी बात को ग्रंथकार बतला रहे हैं। श्रोतमिति हिंदी व्याख्या करुणापराणां दयालु स्वभाव वाले व्यक्तियों का श्रोत्रम कान श्रुतेन वेद शास्त्र के श्रवण से एव ही कुंडलेन कुंडल से न नहीं पाणिः हाथ दानेन दान से कंकड़ेन कंकड़ से तू तो न नहीं कायः शरीर परोपकारैः दूसरों के उपकार से चंदनेन चंदन से तू तो न नहीं विभाति शोभित होता है। हिंदी अनुवाद दयालु स्वभाव वाले व्यक्तियों का कान वेद मंत्रों के श्रवण से ही शोभित होता है न कि कुंडल से हाथ दान से शोभित होता है न कि कंकड़ से शरीर दूसरे के उपकार से शोभित होता है न कि चंदन से। श्लोक पापान् निवारयति योजयते हिताय गुह्यं निगुह्यति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं निगदन्ति सन्तः। प्रसंगः सम्प्रति सन्मित्रलक्षणं निरूपयति ग्रन्थकारः पापादिति अन्वयः पापात् निवारयति हिताय योजयते गुह्यं निगुह्यति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं न जहाति काले च ददाति इत्थं सन्मित्रलक्षणं सन्तः निगदन्ति। व्याख्या पापात् दुराचरणात् निवारयति निर्वयति हिताय सत्कर्मणा चरणाय योजयते प्रवर्तयति गुह्यं गोपनीयं निगुह्यति गोप्यति गुणान् दयादाक्षिण्यादीन् प्रकटीकरोति प्रकाशयति आपद्गतं विपद्ग्रस्तं न जहाति न त्यजति काले च समय च प्रदानोचित समय चेत्यर्थ ददाति वितरति यथोचित्तं धनादि वितरणं करोतीत्यर्थ। इदम् एतत् सन्मित्रलक्षणं निष्कपट सुहृत् स्वरूपं सन्तः सज्जनाः निगदन्ति कथयन्ति। सरलार्थ दुराचरणानिवर्तयति सत्कर्मणा चरणाय प्रवर्तयति गोपनीयं गोपयति दया दाक्षिण्यादि गुणान् प्रकाशयति विपद्ग्रस्तं न त्यजति प्रदानोचित समये च यथोचितं धनादि वितरणं करोति इत्येतत् निष्कपट सुहृत्स्वरूपं सज्जनाः कथयन्ति। टिप्पणी: आपद्गतम् आपदं गतः आपद्गतस्तम् सन्मित्रलक्षणम् सच्च तन्मित्रं सन्मित्रं कर्मधारयः तस्य लक्षणं सन्मित्रलक्षणम् तत्षष्ठी तत्पुरुष श्लोके अस्मिन् वसंतिलका वृत्तं लक्षणं यथा उक्ताः वसंतिलका तभजा जगौगः इति। हिंदी प्रसंग: अब अच्छे मित्र के लक्षण का निरूपण कर रहे हैं ग्रंथकार। पापादिति: हिंदी व्याख्या: पापात दुराचरण से निवारयति निवारण करता है, हिताय सत्कर्म के आचरण के लिए योजयते प्रवर्तन करता है। गुह्यम: छिपाने योग्य को निगुहति छिपाता है। गुणान: दया दाक्षिण्य आदि गुणों को प्रकटीकरोति प्रकाशित करता है। आपद्गतम: विपत्ति में पड़े हुए को न नहीं जहाति छोड़ता है। च तथा: काले समय पर अर्थात समुचित समय पर ददाति देता है अर्थात समुचित धन आदि का वितरण करता है। इदम: इसे सन्मित्र लक्षणम निष्कपट मित्र के स्वरूप संतः सज्जन लोग निगदंति कहते हैं। हिंदी अनुवाद: पाप से निवारण करता है, हित के लिए प्रवर्तन करता है, छिपाने योग्य को छिपाता है, गुणों को प्रकाशित करता है, विपत्ति में पड़े हुए को नहीं छोड़ता है, समय आने पर प्रदान करता है। इसे अच्छे मित्र का लक्षण सज्जन लोग कहते हैं। विमर्श: जो निष्कपट हृदय वाले मित्र होते हैं वे अपने मित्र को पाप कर्म करने को मना करते हैं तथा मित्र के हित के लिए सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। मित्र की छिपाने योग्य बात को छिपाते हैं तथा उसके दया दाक्षिण्य आदि गुणों का प्रचार करते हैं। विपत्ति में पड़े हुए मित्र का कभी भी त्याग नहीं करते हैं तथा जब आवश्यकता होती है समुचित धन आदि का प्रदान करते हैं। श्लोक: पद्मा करम दिनकरो विकचो करोति चंद्रो विकाशयति कैरव चक्रवालम नाभ्यर्थितो जलधरोपि जलम ददाति संतः स्वयं परहिते विहिताभियोगाः। प्रसंग: सज्जनाः स्वयं परहिते प्रवित्ताः भवन्ति त्याहोदाहरण मुखेन पद्मा करमिति। अन्वयः: नाभ्यर्थितः दिनकरः पद्माकरं विकचीकरोति चन्द्रः कैरवचक्रवालं विकासयति जलधरः अपि जलं ददाति संतः स्वयं परहिते विहिताभियोगाः। व्याख्या: नाभ्यर्थितः अप्रार्थितः दिनकरः सूर्यः पद्माकरं कमलसमूहं विकचीकरोति विकासयति चन्द्रः चंद्रमा कैरवचक्रवालं कुमुद समूहं विकासयति प्रफुल्ली करोति जलधरः अपि मेघः अपि जलं सलिलं ददाति वितरति संतः सज्जनाः स्वयं आत्मनैव स्वतः एवेत्यर्थः परहिते लोक कल्याणे विहिताभियोगाः कृतयत्नाः प्रवृत्ताः इत्यर्थः भवन्तीति शेषः। सरलार्थ: अप्रार्थितः सूर्यः कमलसमूहं विकासयति चंद्रमा कुमुद समूहं प्रफुल्लीकरोति मेघो अपि सलिलं वितरति सज्जनाः स्वत एव लोककल्याणे प्रवृत्ता भवन्ति। टिप्पणी: नाभ्यर्थितः न अभ्यर्थितः नाभ्यर्थितः पद्माकरं पद्मानाम आकरः पद्माकरं षष्ठी तत्पुरुष कैरवचक्रवालं कैरवाणां चक्रवालं कैरवचक्रवालं तत् षष्ठी तत्पुरुष परहिते परेशाम हितः परहितस्तस्मिन् षष्ठी तत्पुरुष विहिताभियोगाः विहितः अभियोगः यस्ते बहुव्रीहि श्लोके अस्मिन् वसंत तिलका वृत्तं लक्षणं यथा उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः इति अपि चात्रार्थं तर न्यासोलंकारस्त लक्षणम यथा सामान्यम वा विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि कार्यंच कारणेनेदं कार्येण च समर्थ्यते साधर्मेणेतरेणांतर न्यासोष्टधा ततः इति। अप्रार्थितः सूर्यः कमलसमूहं विकासयति यतो हि तस्य कमल विकासन धर्मः स्वाभाविक एवास्ति। अप्रार्थितः चंद्रमा कुमुदसमूहं विकासयति यतो हि तस्य कुमुद विकासन धर्मः स्वाभाविकम् एवास्ति। अप्रार्थितो मेघो अपि जलं ददाति यतो हि तस्य जलदा न धर्म स्वाभाविक एवास्ति तथैवा प्रार्थितः सज्जनो अपि स्वत एव परोपकारे प्रवृत्तो भवति यतो हि तस्य परोपकार प्रवृत्ति धर्म स्वाभाविक एवास्ति। हिंदी प्रसंग। सज्जन लोग स्वतः परोपकार में प्रवृत्त होते हैं, इसी बात को बतला रहे हैं ग्रंथकार पद्माकरमिति। हिंदी व्याख्या। नाभ्यर्थितः बिना प्रार्थना किए ही दिनकरः सूर्य पद्माकरम पद्मों के समूह को विकची करोति विकसित करता है। चंद्रः चंद्रमा कैरव चक्रवालम कुमुदों के समूह को विकास्यति विकसित करता है। जलधरः मेघ अपि भी जलम जल ददाति देता है। संतः सज्जन लोग स्वयं अपने से ही पर हिते दूसरे के कल्याण में विहिताभियोगा प्रवृत्त होते हैं। हिंदी अनुवाद। बिना प्रार्थना किए ही सूर्य पद्मों के समूह को विकसित करता है, चंद्रमा कुमुदों के समूह को विकसित करता है, मेघ भी जल देता है। सज्जन लोग अपने आप ही दूसरों के कल्याण में प्रवृत्त होते हैं। विमर्श। बिना प्रार्थना किए ही सूर्य कमल की विकसित करता है, क्योंकि कमल को विकसित करना उसका स्वाभाविक धर्म है। बिना प्रार्थना किए ही चंद्रमा कुमुद को विकसित करता है, क्योंकि कुमुद को विकसित करना उसका स्वाभाविक धर्म है। बिना प्रार्थना किए ही मेघ भी जल देता है, क्योंकि जल प्रदान करना उसका स्वाभाविक धर्म है। इस प्रकार बिना प्रार्थना किए ही सज्जन लोग दूसरे के कल्याण में स्वयं ही प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि दूसरों का कल्याण करना उनका स्वाभाविक धर्म है। श्लोक। एके सत्पुरुषाः परार्थ घटकाः स्वार्थ परित्यज्य ये सामान्यास्तु परार्थमुद्यम भृतः स्वार्थाविरोधेन ये ते मानुष राक्षसाः परहितं स्वार्थाय निधनन्ति ये तु नन्ति निरर्थकं परहितं तेके न जानीमहे। प्रसंगः। इदानीं कार्यविशेषानुसारं हि जानान् मुत्तमत्वं मध्यम त्वम् अधम त्वं मधम माधमत्वं च भवति प्रतिपादयति ग्रंथकारः। एक इति अन्वय। ये स्वार्थ परित्यज्य परार्थ घटकाः सत्पुरुषाः एके ये तु स्वार्थाविरोधेन परार्थम उद्यम भृतः सामान्याः ये स्वार्थाय परहितं निधनन्ति ते अमी मानुष राक्ष साह एतु परहितं निरर्थकं नन्ति ते के न जानीमहे। व्याख्या। ये पुरुषाः स्वार्थम निज प्रयोजनम परित्यज्य विहाय परार्थ घटका अन्य प्रयोजन साधकाः भवन्तीति शेषते सत्पुरुषाः सज्जनाः एके एक द्विसंख्याकाः विरला इत्यर्थ संतीति शेष ये तु ये पुरुषास्तु स्वार्थाविरोधेन निज प्रयोजन प्रातिकूल्याभावेन निज प्रयोजा अनुकूलेन्यत्यर्थ परार्थम अन्येषां कृते उद्यम भृत उद्योगधारका भवन्तीति शेष ते सामान्याः साधारणाः पुरुषाः सन्तीति शेष ये पुरुषाः स्वार्थाय निज प्रयोजनाय परहितम् अन्याभीष्टकार्यं निधनन्ति विद्यातयन्ति ते उपर्युक्ताः पुरुषाः परहितघातका इत्यर्थ। अमी वक्ष्यमाणाः मानुष राक्षसाः मनुष्येषु राक्षस रूपाः राक्षस कर्म कारिणो मनुष्याधमा इत्यर्थ संतिति शेषः ये तु ये पुरुषास्तु परहितं अन्याभीष्ट कार्यं निरर्थकं निष्प्रयोजनं निज प्रयोजनं विनय व्यत्यर्थ नन्ति विध्वंसयन्ति ते उपर्युक्ताः पुरुषाः परहित विध्वंसका इत्यर्थ। के किन्नाम धेयाः संतीति शेष न जानीमहे न विद्मः वयमिति शेष सरलार्थ। ये पुरुषाः निज प्रयोजनं विहायान्य प्रयोजन साधका भवन्ति ते सज्जनाः विरलाः सन्ति किन्तु ये पुरुषाः निज प्रयोजनानुकूले नान्येषां कृते उद्योगधार का भवन्ति ते साधारण पुरुषा सन्ति। ये पुरुषाः निज प्रयोजनायान्याभीष्ट कार्यं निधातयन्ति ते मनुष्येषु राक्षस रूपाः पुरुषाधमा सन्ति किन्तु ये पुरुषाः निष्प्रयोजनमेवान्याभीष्ट कार्यं विध्वंसयन्ति ते किन्नामधेया संतिति वयम न विद्मः। टिप्पणी, स्वार्थम स्वस्य अर्थ स्वार्थस्तम। षष्ठी, तत्पुरुष परार्थ घटका परेशाम अर्था परार्था। षष्ठी, तत्पुरुष तेषां घटका परार्थ घटका। षष्ठी, तत्पुरुष सत्पुरुषाः संतस्ते पुरुषाः कर्मधारय स्वार्था विरोधेन स्वस्य अर्थः स्वार्थः। षष्ठी, तत्पुरुष न विरोध अविरोधः नय तत्पुरुष स्वार्थस्य अविरोधः स्वार्था विरोधस्तेन। षष्ठी, तत्पुरुष परार्थ परेभ्य इदमिति परार्थम नित्य समासः उद्यम भृत उद्यमं विव्रति इति उद्यम भृतते उपपद समासः स्वार्थाय स्वस्य अर्थ स्वार्थ तस्मै। षष्ठी, तत्पुरुष परहितं परेषां हितमिति परहितं तत्। षष्ठी, तत्पुरुष मानुष राक्षसाः मानुषेषु राक्षसा मानुष राक्षसा। षष्ठी, तत्पुरुष निरर्थकं निर्गतः अर्थ यस्मात् तत् निरर्थकं तद्यथा स्यात् तथा। बहुव्रीहि श्लोके अस्मिन् शार्दूल विक्रीडितं वृत्तं लक्षणं यथा सूर्या स्वैर मसजस्ततः सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम् इति। अपि चात्रोपमालङ्कारस्त लक्षणं यथा साम्यं वाच्य वैधर्म्य वाक्यैक्य उपमाद्वयो इति। संसारे चतुर्विधा पुरुषा दृश्यन्ते। पुरुषोत्तमाः पुरुषमध्यमाः पुरुषाधमाः पुरुषाधमाः धमाश्च ये पुरुषेषु उत्तम विचारवन्तस्ते पुरुषोत्तमाः सज्जनाः कथ्यन्ते न तु सामान्याः पुरुषाः। एतेषां प्रकृतिरियमस्ति यत्ते निजप्रयोजनं विहाय परस्य प्रयोजनं साधयन्ति। संसारे सज्जनानां संख्या स्वल्पा विद्यते। एते विरलाः सन्ति ये पुरुषेषु मध्यम विचारवन्तस्ते पुरुषमध्यमाः सामान्याः पुरुषाः कथ्यन्ते। एतेषां प्रकृतिरियमस्ति यत्ते निजप्रयोजनानुकूलेन परेषां कृते उद्यमं धारयन्ति। संसारे सामान्यपुरुषाणां संख्या बाहुल्येन दृश्यते। ये पुरुषेषु अधम विचारवन्तस्ते पुरुषाधमाः मानुष राक्षसाः कथ्यन्ते। एतेषां प्रकृतिरियमस्ति यत्ते निजप्रयोजनाय परस्याभीष्टं कार्यं विधातयन्ति। एतेषां प्रवृत्तिः राक्षसप्रवृत्तिरिव भवति यथा राक्षसा स्वप्रयोजनाय परस्याभीष्टं कार्यं विधातयन्ति तथैव इमेपि संसारे पुरुषाधमानां संख्यापि बाहुल्येन भवति। ये पुरुषेषु अधमाधम विचारवन्तस्ते पुरुषाधमाधमाः कथ्यन्ते। एतेषां प्रकृतिरियमस्ति यत्ते निष्प्रयोजनमेव परस्याभीष्टं कार्यं विध्वंसयन्ति। संसारे पुरुषाधमा अधमानां संख्यापि बाहुल्येन दृश्यते। एते हेयाः पुरुषा वर्तन्ते। अतः ग्रन्थकारः कथयति यद् वयं न विद्मः के ते। हिन्दी प्रसंग। कार्य विशेष के अनुसार ही पुरुष उत्तम मध्यम अधम तथा अधमाधम होते हैं। इसी बात को बतला रहे हैं ग्रंथकार। एक इति हिंदी व्याख्या। ये जो पुरुष स्वार्थम अपने प्रयोजन को परित्यज छोड़कर परार्थ घटका दूसरे के प्रयोजन को सिद्ध करने वाले हैं ते वे सत्पुरुषाः सज्जन लोग एके एक दो हैं अर्थात विरले हैं। ये जो पुरुष तू तो स्वार्था विरोधेन अपने प्रयोजन के विरुद्ध न होने से परार्थम दूसरे के लिए उद्यम भृत उद्यम करते हैं सामान्याः वे सामान्य पुरुष हैं। ये जो पुरुष स्वार्थाय अपने प्रयोजन के लिए परहितम दूसरे के अभिष्ट कार्य को निधनंती नष्ट करते हैं ते वे अमि ये मानुष राक्षसा मनुष्य में राक्षस हैं। तू किंतु ये जो पुरुष परहितम दूसरे के अभिष्ट कार्य को निरर्थकम प्रयोजन के बिना ही नंती नष्ट करते हैं ते वे के कौन है न नहीं जानी महे जानते हैं हम। हिंदी अनुवाद। जो अपने प्रयोजन को छोड़कर दूसरे के प्रयोजन को सिद्ध करने वाले हैं वे सज्जन बिरले हैं। जो तो अपने प्रयोजन के विरुद्ध न होने से दूसरे के लिए उद्यम करते हैं वे साधारण पुरुष हैं। जो अपने प्रयोजन के लिए दूसरे के अभिष्ट कार्य को नष्ट करते हैं वे मनुष्य राक्षस स्वरूप हैं। किंतु जो दूसरे के अभिष्ट कार्य को प्रयोजन के बिना ही नष्ट करते हैं वे कौन हैं हम नहीं जानते हैं। विमर्श। संसार में चार प्रकार के पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अधम पुरुष तथा अधमाधम पुरुष। जो पुरुष में उत्तम विचार के हैं उन्हें पुरुषोत्तम सज्जन कहते हैं, न कि सामान्य पुरुष। इनकी प्रकृति यह है कि वे अपने प्रयोजन को छोड़कर दूसरे के प्रयोजन को सिद्ध करते हैं। संसार में सज्जनों की संख्या नगण्य है, अर्थात ये विरले हैं। जो पुरुषों में मध्यम विचार के हैं वे पुरुष मध्यम कहलाते हैं, ये सामान्य पुरुष हैं। इनकी प्रकृति यह है कि अपने प्रयोजन के विरुद्ध न होने से दूसरे के लिए उद्यम करते हैं। संसार में सामान्य पुरुष की संख्या प्रायः देखी जाती है। जो पुरुषों में अधम विचार के हैं उन्हें अधम पुरुष कहा जाता है, ये पुरुषों में राक्षस स्वरूप हैं। इनकी प्रकृति राक्षसों की प्रकृति के समान होती है। जिस प्रकार से राक्षस अपने प्रयोजन के लिए दूसरे के अभिष्ट कार्य को नष्ट करते हैं उस प्रकार ये भी करते हैं। संसार में अधम पुरुषों की संख्या अधिक देखी जाती है। जो पुरुषों में अधम से भी अधम विचार के हैं वे अधम से भी अधम पुरुष कहलाते हैं। इनकी प्रकृति यह है कि वे अपने प्रयोजन के बिना ही दूसरे के अभिष्ट कार्य को नष्ट करते हैं। संसार में इस प्रकार के अधम से भी अधम पुरुषों की संख्या सर्वाधिक है। ये अत्यंत निंदनीय त्याज्य होते हैं। अतः ग्रंथकार कह रहे हैं कि ये कौन है हम नहीं जानते हैं। श्लोक। क्षीरेण आत्मगतोदकाय ही गुणा दत्ता पुरा तेखिला क्षीरोत्तापम वेक्ष्य तेन पयसा स्वात्मा कृशानौ हुतः गंतु पावक मुन्मनस्तदभवद् दृष्ट्वा तु मित्रापदं युक्तं तेन जलेन शाम्यति सतां मैत्री पुनस्त्वो दृशि। प्रसंगः। संप्रति सज्जनानां मित्रतायाः स्वरूपमुदाहरणमुखेन निरूपयति ग्रंथकार क्षीरेणेति अन्वयः। पुरा क्षीरेण आत्मगतोदकाय अखिला गुणा दत्ता ही तेन पयसा क्षीरोत्तापम अवेक्ष स्वात्मा कृशानौ हुतः तत् तु मित्रापदं दृष्ट्वा पावकं गन्तुम् उन्मनः अभवत् तेन जलेन युक्तं साम्यति सतां मैत्री पुनः तु ईदृशी। व्याख्या। पुरा पूर्वं क्षीरेण दुग्धेन आत्मगतोदकाय स्वभाव स्वाभ्यंतर प्राप्त जलाय अखिला सकलाः ते प्रसिद्धाः गुणाः श्वेत मधुरत्वादयः दत्ता समर्पिता ही निश्चयेन तेन तेन कारणेन पयसा जलेन क्षीरो तापम दुग्ध संतापम अग्नि संयोगा दुद्भूतम दुग्ध संतापमित्यर्थ अवेक्ष दृष्ट्वा स्वात्मा निज देह कृशानौ अग्नौ हुतः दग्ध कृतः तत् तु दुग्धं तु मित्रापदं सुहृत् विपदं देह दग्ध रूपामित्यर्थ दृष्ट्वा विलोक्य पावकं अग्निं गन्तुं प्रवेष्टुं उन्मनः उत्कं उत्कंठितमित्यर्थ अभवत् वभूव तेन तेन कारणेन जलने शलिलेन युक्तं संबद्धं सत् साम्यति शान्तं भवति सतां सज्जनानां मैत्री मित्रता पुनः तु अपि ईदृशी एतादृशी दुग्ध जल वदित्यर्थ भवतीति शेष सरलार्थ। पूर्व दुग्धेन स्वाभ्यंतर प्राप्त जलाय सकलाः प्रसिद्धा स्वकीयाः श्वेत मधुरत्वादयो गुणाः समर्पित तैव तेन कारणेन जलेन दुग्धस्याग्नि संयोगा भूतं संतापं दृष्ट्वाग्नौ निज देह दग्धीकृतः। दुग्धं तु सुहृदः देह दग्ध रूपां विपदं दृष्ट्वाग्नि प्रवेष्टुम् उत्कंठितं वभूव तेन कारणेन जलेन संबद्धं सत् शान्तं भवति सज्जनानां मित्रा मित्रतापि चैतादृशी दुग्ध जलवद् भवति। टिप्पणी। आत्मगतोदकाय आत्मानं गतं आत्मगतं द्वितीया तत्पुरुष आत्मगतश्च तदुदकञ्चेति आत्मगतोदकं तस्मै कर्मधारय क्षीरोत्तापम् क्षीरस्य उत्तापः क्षीरोत्तापस्तम् षष्ठी तत्पुरुष, स्वात्मा स्वस्य आत्मा स्वात्मा षष्ठी तत्पुरुष, मित्रापदम मित्रस्य आपद मित्रापद, ताम षष्ठी तत्पुरुष, उन्मनः उद्गतम मनो यस्य तत् उन्मनः बहुव्रीहि, श्लोके अस्मिन् शार्दूल विक्रीडितम वृत्तम लक्षणम यथा सूर्यास्वैर मसजस्ततः सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम इति, अपि चात्र संभावन मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत् इति सामान्यं वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते, यत्र सो अर्थान्तर्न्यासः साधर्म्येण तरेण वा इत्येतयोः सम्भावनार्थान्तर्न्यासोः संकरस्त लक्षणं यथा अङ्गाअङ्गित्वे अलङ्कृतानां तद् देकाश्रयस्थितौ संदिग्धत्वे च भवति संकरस्त्रिविधः पुनः इति, सज्जनानां मैत्री दुग्धजलवत् भवति। यथा दुग्धं स्वाभ्यंतर प्राप्त जलाय स्वकीयान श्वेत मधुरत्वादीन गुणान प्रददाति, तथैव सज्जनो अपि स्वसकाशमागताय स्वमित्राय सर्वस्वं प्रददाति, तस्माद् दुग्धस्याग्नि संयोगादुद्भूतं संतापं दृष्ट्वा जलमात्मानम् अग्नौ दधि करोति, मित्रम् अपि सज्जनस्य वियोगं न सहते, तस्मात् प्राणान् त्यक्तुं वाञ्छति, दुग्धम् अपि जलं दग्धं दृष्ट्वा अग्नौ स्वात्मानं होतुमिच्छति, सज्जनो अपि मित्रस्य मृत्यु कवलनं दृष्ट्वा स्वप्राणान् त्यक्तुमिच्छति, पुनश्च दुग्धं केनचित् प्रति क्षिप्तं जलं प्राप्य शान्तं भवति, सज्जनो अपि स्वमित्रस्य संयोगं प्राप्य शान्तो भवति। हिंदी प्रसंग। अब सज्जनों की मित्रता के स्वरूप का निरूपण उदाहरण के द्वारा कर रहे हैं ग्रंथकार क्षीरे डेति। हिंदी व्याख्या। पूरा पहले क्षीरेण दूध के द्वारा आत्मगतोदकाय अपने में मिले जल को अखिलाह सारे ते प्रसिद्ध गुणाह सफेद मधुर आदि गुण दत्ता दे दिए गए ही निश्चित रूप से येन उस कारण से पयसा जल के द्वारा क्षीरोत्तापम दूध का जलना अवेक्ष देखकर स्वात्मा अपना शरीर कृषाणु अग्नि में हुतः आहुति दे दिया जाता है, तत् दूध तू तो मित्रा पदम मित्र की विपत्ति को दृष्टवा देखकर पावकम अग्नि को गंतुम जाने के लिए उन्मनः उत्कंठित अभवत हुआ, तेन उस कारण से जलेन जल से युक्तम युक्त होकर साम्यति शांत हो जाता है, सताम सज्जनों की मैत्री मित्रता पुनः भी तू तो ईदृशी इसी प्रकार की अर्थात दूध और जल के समान होती है। हिंदी अनुवाद। पहले दूध ने अपने जल में मिले हुए जल को सारे गुण निश्चित रूप से दे दिए, उससे दूध का जलना देखकर अपने को आग में आहुति दे दी, दूध तो मित्र की विपत्ति को देखकर आग में जाने के लिए उत्कंठित हुआ, उससे जल से युक्त होकर शांत हो जाता है, सज्जनों की मित्रता भी तो इसी प्रकार की होती है। विमर्श। सज्जनों की मित्रता जल और दूध के समान होती है, जिस प्रकार दूध अपने में मिले हुए जल को अपने सफेद मधुर आदि गुणों को देता है, उसी प्रकार सज्जन अपने पास आए हुए अपने मित्र को सर्वस्व प्रदान कर देता है, अतः जल भी दूध के जलना देखकर अपने को आग में आहुति दे डालता है अर्थात जला डालता है, इसी प्रकार सज्जन जब विपत्ति में पड़ जाता है या उसका वियोग हो जाता है तो मित्र दुख या वियोग का सहन नहीं कर पाता है, उसके निवारण के लिए कोशिश करता है किंतु जब सफल नहीं होता है तो दुख से अपने प्राण को छोड़ना चाहता है, दूध भी जल को जलते देखकर आग में प्रवेश करने के लिए उत्कंठित होता है, सज्जन भी अपने मित्र को प्राण छोड़ते हुए देखकर अपना प्राण छोड़ना चाहता है, फिर दूध किसी के द्वारा जल से युक्त होकर शांत हो जाता है, उसी प्रकार सज्जन भी अपने मित्र को जीवित पाकर या संकट मुक्त पाकर शांत हो जाता है अर्थात मित्र के संयोग से आनंद का अनुभव करता है। श्लोक। इतः स्वपीति केशव कुलमितस्तदीय द्विषाम इतश्च शरणार्थिनां शिखरिणां गड़ा शेरते इतोपि वडवानलः सह समस्त संवर्तकै रहो विततमूर्जितं भरसहं च सिंधोर वपुः प्रसंगः महान्तः पुरुषाः सर्वेषां आश्रयदातारो भवन्ति तेषां हृदयानि विशालानि भवन्ति क्या होदाहरण मुखेन इत इति अन्वयः इतः केशवः स्वपीति इतः तदीय विद्विषां कुलम् इतः च शरणार्थिनां शिखरिणां गणा शेरते इतः अपि समस्त संवर्तकैः सह वडवानलः अहो सिन्धो वपुः विततम् उर्जितं भरसहं च व्याख्या इतः अस्मिन् प्रदेशे केशवः विष्णु स्वपीति शेते इतः अस्मिन् प्रदेशे तदीय विद्विषां विष्णुशत्रूणां दैत्यानामित्यर्थ कुलं समूह अस्तित्वशेष इत च अस्मिन् प्रदेशे च शरणार्थीनाम् आश्रयगतानां शिखरीणां पर्वतानां मैनाकादिपर्वतानामित्यर्थ गणाः सङ्घाः शेरते स्वपन्ति इतः अपि अस्मिन् प्रदेशेऽपि समस्त संवर्तकैः सकलप्रलयकालिकमेघविशेषैः सह सार्धं वडवानल वडवाग्निः अस्तित्वशेष अहो आश्चर्यं सिन्धुसमुद्रस्य वपुः शरीरं विततं विस्तृतम् ऊर्जितं बलशाली भरसहं च भारधारणसमर्थ च अस्तित्वशेष सरलार्थः अस्मिन् प्रदेशे विष्णुः शेते अस्मिन् प्रदेशे विष्णुशत्रूणां दैत्यानां समूहो अस्ति अस्मिन् प्रदेशे चाश्रयागतानां मैनाकादिपर्वतानां सङ्घाः स्वपन्ति अस्मिन् प्रदेशेऽपि सकलप्रलयकालिकमेघविशेषैः सार्धं वाड्वाग्निरस्ति आश्चर्यं समुद्रस्य शरीरं विस्तृतं बलशाली भारधारणसमर्थः चास्ति टिप्पणी तदीय विद्विषां तस्य इमे तदीयाः तदीयाश्च ते द्विषश्चेति तदीयस्द्विषस्तेषां कर्मधारय शरणार्थीनां शरण अर्थयन्ते तक्षशिलाः शरणार्थिनस्तेषाम् उपपदसमासः समस्तसंवर्तकैः समस्ताश्च ते संवर्तकाश्चेति समस्तसंवर्तकास्तैः कर्मधारय भरसहं भरस्य सहं भरसहं षष्ठी तत्पुरुष श्लोके अस्मिन् पृथ्वीवृत्तं लक्षणं यथा जसौ जसयला वसुग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरुः इति अपि चात्रा प्रस्तुत प्रशंसालङ्कारस्थलक्षणं यथा क्वचिद् विशेषः सामान्यात् सामान्यं वा विशेषतः कार्यानिमित्तं कार्यञ्च हेतोरथ समात् समम् अप्रस्तुता प्रस्तुत चेद् गम्यते पञ्चधातः अप्रस्तुत प्रशंसा स्यात् इति महान्तः सज्जनाः सर्वेषामाश्रय दातारो भवन्ति तेषां दृष्ट्या न कोऽपि शत्रुमित्रयोर्मध्ये विभेदो वर्तते ते क्षुद्रजनानामपि च महतामाश्रय दाता भवन्ति यथा समुद्रः केशवादीनां वाडवानलान्तानां सर्वेषामाश्रयदाता भवति तस्य पार्श्वे न कोऽपि भेदो दृश्यते अतः सज्जनानां चरितं वर्णनीयं वर्तते हिंदी प्रसंग महापुरुष सबके आश्रयदाता होते हैं तथा उनके हृदय विशाल होते हैं इसी बात को उदाहरण के द्वारा बतला रहे हैं ग्रंथकार इत इति हिंदी व्याख्या इतः इधर केशवः भगवान विष्णु स्वपीति शयन कर रहे हैं इतः इधर तदीय विद्विषाम उनके शत्रुओं का अर्थात राक्षसों का कुलम समूह च और इतः इधर शरणार्थीनाम शरण चाहने वाले शिखरीणाम पर्वतों का अर्थात मैनाक आदि पर्वतों का गणाह समूह शेरते शयन कर रहे हैं इतः इधर अपि भी समस्त संवर्तकैः सभी प्रलयकालिक मेघों के सह साथ वडवानलः वडवानल है अहो आश्चर्य है सिंधो समुद्र का वपुह शरीर विततम विस्तृत ऊर्जितम वलशाली च तथा पर सहम भार भर सहम भार धरण करने में समर्थ हिंदी अनुवाद इधर भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं उधर उनके शत्रुओं का समूह है और इधर शरण चाहने वाले पर्वतों के समूह शयन कर रहे हैं तो उधर सभी प्रलयकालिक मेघों के साथ वडवानल है आश्चर्य है समुद्र का शरीर विस्तृत बलशाली तथा भार धारण करने में समर्थ है विमर्श जो महान सज्जन है वे सबके आश्रयदाता होते हैं। उनकी दृष्टि में शत्रु और मित्र के बीच कोई भेद नहीं रहता है। वे छोटे से लेकर बड़े तक को आश्रय प्रदान करते हैं। जिस प्रकार समुद्र भगवान विष्णु से लेकर वडवानल तक के सभी का आश्रयदाता है, उसी के पास कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए कहते हैं कि सज्जनों का चरित्र अवर्णनीय है। श्लोक। तृष्णाम छिंदी भस्माम जहि मदम पापे रति मा कृथा सत्यम ब्रूहियनुयाहि साधु पदवीं सेवस्व विद्वज्जनम मान्यान मानय विद्विषोत्य नुनय प्राख्यापय प्रश्रयम् कीर्तिम पालय दुखिते कुरु दयामेतत् सताम चेष्टितम्। प्रसंगः। संप्रति पुनः सज्जनानां चेष्टितम् निर्दिशति ग्रंथकारः तृष्णामिति अन्वयः। तृष्णाम छिंदी क्षमाम भज मदम जहि पापे रतिमा कृथाह सत्यम ब्रूहि साधु पदवीम अनुयाहि विद्वजनम सेवस्व मान्यान मानय विद्विषः अपि अनुनय प्रश्रयम प्रख्यापय कीर्ति पालय दुखिते दयाम कुरु एतत् सताम चेष्टितम्। व्याख्या। तृष्णाम स्प्रीहाम छिंदी खंडयः क्षमाम सहनशीलताम भजत सेवस्व मदम गर्वम जहि त्यज्य पापे दुष्कर्मणि रतिम प्रीतिम मा कृथा न विधेहि सत्यम ऋतम ब्रूहि वद साधु पदवीम सन्मार्गम अनुयाहि अनुसर विद्वजनम पंडित समूहम सेवस्व भज मान्यान पूज्यान मानय पूजयः विद्विषः अपि शत्रुन अपि अनुनय प्रसादय प्रश्रयम विनय प्राख्यापय प्रकटय कीर्तिम यशः पालय रक्ष दुखिते दुखाकुले दयाम कृपाम कुरु विधेहि एतत् इदं सर्वं सतां सज्जनानां चेष्टितम् आचरणम् अस्तित्वशेष सरलार्थ स्पृहा खंडय सहनशीलतां सेवस्व गर्वं त्यज्य दुष्कर्मणि प्रीति न विधेहि ऋतं वद सन्मार्गमनुसर पंडित समूहं भज पूज्यान पूज शत्रुनपि प्रसादय विनयं प्रकट यशः रक्ष दुखाकुले कृपां विधेहि इदं सर्वं सज्जनानाम् आचरणम् अस्ति। टिप्पणी। साधु पदवीम साधुनाम पदवी साधु पदवी ताम षष्ठी तत्पुरुष वेद्वजनम विदुषाम जनः विद्वजनस्तम षष्ठी तत्पुरुष। श्लोके अस्मिन् शार्दूल विक्रीडितं वृत्तं तल्लक्षणं यथा सूर्या स्वैर मसजस्तताः सगुरवः शार्दूल विक्रीडितं इति हिंदी प्रसंग। अब फिर सज्जनों के आचरणों का निर्देश कर रहे हैं ग्रंथकार तृष्णामिति। हिंदी व्याख्या। तृष्णाम लालसा को छिंदी काट डालो अर्थात छोड़ो। क्षमाम सहनशीलता का भज धारण करो। मदम गर्व को जहि छोड़ो। पापे दुष्कर्म में रतिम प्रेम मा कृथा मत करो। सत्यम सच ब्रूहि बोलो। साधु पदवीम सज्जनों के मार्ग का अनुयाही अनुसरण करो। विद्वजनम विद्वानों के समूह की सेवस्व सेवा करो। मान्यान पूज्यों का मानय आदर करो। विद्विषह शत्रुओं को अपि भी अनुनय मनाओ। प्रश्रयम नम्रता प्रख्यापय दिखलाओ। कीर्तिम यश की पालन रक्षा करो। दुखिते दुखियों पर दयाम दया कुरु करो। एतत् यह सताम सज्जनों का चेष्टितम आचरण है। हिंदी अनुवाद। लोभ को छोड़ो। क्षमा का धारण करो। गर्व को छोड़ो। पाप में प्रेम मत रखो। सच बोलो। सज्जनों के मार्ग का अनुसरण करो। विद्वानों के समूह की सेवा करो। पूज्यों का आदर करो। शत्रुओं को भी मनाओ। नम्रता दिखलाओ। यश की रक्षा करो। दुखियों पर दया करो। यह सज्जनों का आचरण है। श्लोक। मनसि वचसि काये पूय पीयूष पूर्णा स्त्री भुवनमुपकार श्रेणिभिः श्रेणयन्ति परगुण परमाणून पर्वतीकृत्य नित्यं निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। प्रसंग। इदानीमुदाचार चरितानां सज्जनानां दुर्लभत्वं प्रतिपादयति ग्रंथकारः मनसीति अन्वयः मनसि वचसि काये पुण्यपीयूष पूर्णाः उपकार श्रेणीभिः त्रिभुवनं प्रीणयन्तः परगुण परमाणून पर्वतीकृत्य निज हृदि नित्यं विकसन्तः सन्तः कियन्तः सन्ति। व्याख्या मनसि चित्ते वचसि वचने काये शरीरे पुण्यपीयूष पूर्णाः सुकृतामृत पूर्णाः मनोवाक्यै सदैव कर्म क्रीर्वन्तः इत्यर्थ उपकार श्रेणीभिः हिताचरण पंक्तिभिः त्रिभुवनं त्रैलोक्यं प्रीणयन्तः सन्तोषयन्तः परगुण परमाणून अन्य सौजन्यादि गुणा त्यल्प भागान पर्वतीकृत्य पर्वतवद बृहद्रूपान् कृत्वा निज हृदि स्वचित्ते नित्यं सदैव विकसन्तः हर्ष प्राप्नुवन्तः संतः सज्जनानां कियन्तः कियत् संख्याका सन्ति वर्तन्ते अत्यल्प संख्याका दुर्लभा एव सन्ति त्यर्थ सरलार्थ चित्ते वचने शरीरे च स्वीकृतामृत पूर्णाहिता चरण पंक्तिभिः त्रैलोक्यं संतोषयन्तोन्य गुणात्यल्प भागान पर्वतवत् बृहद्रूपान् कृत्वा स्वचित्ते सदैव हर्ष प्राप्नुवन्तः सज्जनाः कियत् संख्या का यर्तन्ते अत्यल्प संख्या का दुर्लभा एवे त्यर्थ टिप्पणी पुण्यपीयूष पूर्णाः पुण्यमेव पीयूषं तत् पुण्यपीयूषं रूपक समासः तेन पूर्णाः पुण्यपीयूष पूर्णाः उपकार श्रेणीभिः उपकाराणां श्रेणयः उपकार श्रेणयस्ताभिः षष्ठी तत्पुरुष त्रिभुवनं त्रयाणां भुवनानां समाहार त्रिभुवनं द्विगु समासः परगुण परमाणून परमश्च ते अणवः परमाणवः कर्मधारे अपरेषां गुणा परगुणाः षष्ठी तत्पुरुष तेषां परमाणवस्तान् षष्ठी तत्पुरुष निज हृदि निजस्य हृत् निज हृत् तस्मिन् षष्ठी तत्पुरुष श्लोके अस्मिन् मालिनी वृत्तं लक्षणं यथा ननमययुतेयं मालिनी भोगी लोकः इति हिंदी प्रसंग। अब उदार चरित वाले सज्जनों की दुर्लभता का प्रतिपादन कर रहे हैं ग्रंथकार मनसीति। हिंदी व्याख्या मनसि मन में वचसि वचन में काये शरीर में पुण्य पीयूष पूर्णाः सत्कर्म रूपी अमृत से भरे हुए उपकार श्रेणी भी अनेक उपकारों से त्रिभुवनम तीनों लोकों को प्रीणयन्तः संतुष्ट करते हुए पर गुण परमाणून दूसरे के दया दक्षिण आदि गुणों के अत्यंतम अल्प भागों को पर्वतीकृत्य पर्वत के समान बृहदाकार बनाकर नित्यम सदा निज हृदि अपने हृदय में विकसंतः प्रसन्न होने वाले संतः सज्जन कियंतः कितने संति हैं अर्थात कुछ ही हैं। हिंदी अनुवाद मन में वचन में तथा शरीर में सत्कर्म रूपी अमृत से भरे हुए अनेक उपकारों से तीनों लोकों को संतुष्ट करते हुए दूसरे के गुणों के अत्यल्प भागों को पर्वत के समान बड़ा बनाकर सदा ही अपने हृदय में प्रसन्न होने वाले सज्जन कितने हैं। श्लोक किम तेन हेम गिरिणाम रजता दृणावा यत्राश्चि ताश्च तरवस्तरवस्त एव मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण कंकोलंबिन कुटजा अपि चंदनाः स्युः। प्रसंग गुणवतां सज्जनानां संसर्गात निर्गुणा अपि सगुणा भवन्ति त्युदाहरण मुखेनाः किमिति। अन्वय तेन हेम गिरिडां रजता दृढां वा किं यत च आश्रिताः तरवः ते एव तरवः मलयम् एव मनामहे। यदाश्रयेण कंगोलंबिन कुटजाः अपि चंदनाः स्युः। व्याख्या तेन प्रसिद्धेन हेमगिरिणा सुवर्ण पर्वतेन सुमेरुडेत्यर्थ रजता दृढा वा रजत पर्वतेन वा कैलास पर्वतेनेत्यर्थ किम् किम् प्रयोजनम् न किमपीत्यर्थ यत्र च यत् प्रदेशे च आश्रिताः आश्रयं गताः स्थिताः इत्यर्थ तरवः वृक्षाः ते एव पूर्वरूपा एव संतितिशेष मलयम् एव मलयपर्वतमेव मन्यामहे बहुमान दृशाः पश्याम वयमिति शेष यदा श्रेण यत् प्रदेशावस्थितेन मलय पर्वताश्रयणे त्यर्थ कंकोलंबी कुटजा अपि कंकोलंबी कुटजा नामक वृक्षा अपि चंदनाः मलयजाः चंदन वृक्ष सदृशा सुगंधिता इत्यर्थ स्युः भवेयुः भवन्ति इत्यर्थ सरलार्थ तेन सुवर्ण पर्वतेन सुमेरुणां रजत पर्वतेन कैलासेन वाकिं प्रयोजनं यत् प्रदेशे च स्थिताः वृक्षाः पूर्वरूपा एव सन्ति वयं मलय पर्वतमेव मन्यामहे यत् प्रदेशावस्थि तेन कंकलो बिन कुटजा वृक्षा अपि मलयजा भवन्ति टिप्पणी हेमगिरिणा हेमनो गिरी हेमगिरिस्तेन षष्ठी तत्पुरुष कंकोलंबिन कुटजा कंकोलाश्च निम्बाश्च कुटजाश्च ते कंकोलंबिन कुटजाः श्लोके अस्मिन् वसंत तिलका वृत्तम लक्षणम यथा उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः इति गुणवतां संगात निर्गुणा अपि सगुणा भवन्ति सज्जन स्वाश्रिताय जनाय सज्जनत्वं प्रददाति सज्जन संगात दुर्जन स्वत एव सज्जन भवति यथैव मलय पर्वत स्थिताः कंकोलंबिन कुटजा वृक्षाः स्वत एव मलय संपर्कात मलयजा भवन्ति चंदन वृक्षस संगादन्य जातीय वृक्षा अपि चंदन वृक्ष सदृशाः सुगंधिता भवन्ति अतो मलय पर्वतो महान गुणवान वर्तते यस्मिन् सद्गुणाः न सन्ति सत् संगात कोपि सद्गुणवान न भवति यथा नाम मात्रेणैव प्रसिद्धयो सुवर्णगिरिः रजतगिरियोरा श्रयणेन कश्चिदपि वृक्षः सुवर्णत्वेन रजत्वेन वा न परिणतो भवति सज्जनानां चरितम् वर्णनीयम् अस्ति तेषां संगादेव दुर्जनः सज्जनो भवति अतो अत्र गुणस्य महात्म्यं विद्यते न तु नामस्येति हिंदी प्रसंग गुण वाले सज्जनों के संसर्ग से गुणहीन जन गुणवान बन जाता है इसे उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं ग्रंथकार कीमत हिंदी व्याख्या तेन उस हिमगिरिणा सुवर्ण पर्वत से अर्थात सुमेरु पर्वत से वा अथवा रजता दृढ़ा रजत पर्वत से अर्थात कैलाश पर्वत से किम क्या प्रयोजन च और यत्र जहाँ आश्रिताः आश्रित तरवह वृक्ष ते वे एव ही तरवह वृक्ष हैं अर्थात वृक्ष के पहले जैसे थे वैसे अब भी हैं कोई परिवर्तन नहीं उनमें मलयम मलय पर्वत को एव ही मन्यामहे मानते हैं हम यदा श्रेण जिसका आश्रय लेने से कंकोलंबिन कुटजाः कंगोल नीम तथा कुटज के वृक्ष अपि भी चंदनाः चंदन स्युः हो जाते हैं हिंदी अनुवाद उस सुवर्ण पर्वत सुमेरु अथवा रजत पर्वत कैलाश से क्या प्रयोजन है जहां आश्रित वृक्ष वे ही वृक्ष हैं हम तो मलय पर्वत को ही मानते हैं जिसका आश्रय लेने से कंकोल नीम तथा कुटज के वृक्ष भी चंदन हो जाते हैं विमर्श गुड़ वालों के संगत से गुड़हीन भी गुड़ वाले बन जाते हैं सज्जन अपने आश्रित व्यक्ति को सज्जन बना देता है सज्जन के संगत से दुर्जन अपने आप सज्जन बन जाता है जिस प्रकार की मलय पर्वत में आश्रित अर्थात स्थित कंकोल नीम तथा कुटज के वृक्ष भी चंदन हो जाते हैं चंदन के वृक्ष के समान सुगंधित हो जाते हैं इसलिए मलय पर्वत महान गुणवान है जिसमें सद्गुण नहीं है उसकी संगति से कोई भी सद्गुण वाला नहीं बन सकता है जिस प्रकार नाम मात्र से ही प्रसिद्ध सुवर्ण पर्वत अर्थात सुमेरु या रजत पर्वत अर्थात कैलाश के आश्रय लेने से कोई भी वृक्ष सोना या चांदी नहीं हो जाता है सज्जनों का चरित्र अवर्णनीय है उनकी संगति से दुर्जन भी सज्जन हो जाता है इसलिए यहाँ पर गुण की महत्ता है न कि नाम की